नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी हम चलेंगे और उनसे लेंगे खास जानकारी। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो सरफिरोजी। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। विद मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. 46.12% voter turnout recorded till 3 p.m. for the second phase of assembly elections in Jammu and Kashmir.
हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत जिले के गुहना में जनसभा की।
Prime Minister hails completion of 10 years of Make in India initiative, reiterates government's commitment to encourage it through all possible ways.
भारत एशिया पावर सूचकांक में जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना।
And IMD forecasts heavy rain in Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh during the next 3 days. And now, Sarfirozi, it's time for a segment, Dateline India, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Pharmacist Day and World Lung Day. So to start off with the first topic, that is the World Pharmacist Day. Well, World Pharmacist Day is observed every year on September 25th to honor and acknowledge pharmacists for the important contributions to enhancing world health. This special day highlights the essential role pharmacists play in improving people's lives. The goal of this day is to encourage and support initiatives that advocate for and increase public awareness of the crucial role that pharmacists play all over the world. And World Pharmacist Day, organized by the International Pharmaceutical Federation, FIPE, a WHO partner, is a day to recognize and celebrate the crucial role that pharmacists play in building healthier communities everywhere.
जी अभिषेक, ये बिल्कुल सही बात है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो हमारी हेल्थ को और अच्छा रखने में एक अहम रोल निभाते हैं। और अगर बात की जाए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की हिस्ट्री की, तो अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की नींव 1912 में रखी गई। वैश्विक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फेडरेशन ने 2009 में तुर्की के इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मान्यता दी। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद इलाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की निभाई भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करना है।
Yes, pharmacists are integral to our healthcare systems, often being the first point of contact for health advice and primary health care, as well as addressing the health needs of our populations in many varied ways, including ensuring access to and providing guidance on essential medicines and medical devices, including diagnostic tests and assistive products, providing expertise for patient care and public health, promoting disease prevention such as by administering vaccines, conducting health screening, educating patients and helping to improve health literacy.
और अभिषेक, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी अभियान होते हैं, लोगों को अलग अलग बीमारियों के बारे में अवेयर करने के लिए जो कैंपेन चलाए जाते हैं, उन्हें आगे ले जाने में भी फार्मासिस्ट काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जब बात आती है किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी नई दवा के इजाद की, तो इसमें भी फार्मासिस्ट आगे रहते हैं। और इसके अलावा फार्मासिस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी दवाएं लोगों तक पहुंच रही हैं वो न सिर्फ असरदार हों बल्कि लोगों के लिए सुरक्षित भी हों।
Yes,
और अभिषेक, वहीं कोविड-19 जो महामारी पूरी दुनिया में फैली थी, तब फार्मासिस्ट का रोल और साफ हो गया, तब ये साफ हो गया कि फार्मासिस्ट का जो काम है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने न केवल वैक्सीनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि महामारी के दौरान दवाओं की उपलब्धता की जब बात आई तो वो भी उन्होंने सुनिश्चित की। वहीं फार्मासिस्ट ने रोगियों को कोविड 19 के लक्षण और उनके उपचार विकल्पों के बारे में जानकारी दी। इस तरह उन्होंने अस्पताल और रोगियों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम किया।
Yes, absolutely. And the COVID-19 pandemic, we saw that the pharmacies are at the forefront of addressing regional and global health crisis. And now moving on to our second topic of the day, that is the World Lung Day. The World Lung Day is observed every year on September 25th, that is today. And the day aims to improve lung health and respiratory diseases. Your lungs are one of the most important organs, which are responsible for exchanging gases in the human body. However, with the increase in smoking, pollution, respiratory infections and others, lung health is increasingly under threat. Hence, World Lung Day highlights the importance of lung health and taking the necessary steps that help to protect the lungs.
और फेफड़ों की बढ़ती बीमारियां अभिषेक एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसके कारण हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और बात करें लंग्स कैंसर की, तो ये दुनिया भर में एक बड़ी परेशानी बनकर उभरा है, जिससे हर साल 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान जा रही है। हालांकि रिसर्चर्स बताते हैं कि इन समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। धूम्रपान फेफड़ों की ज्यादातर बीमारियों के लिए प्रमुख कारण है। फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 80% मौतें धूम्रपान से ही जुड़ी हुई पाई जाती हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण, खासतौर पर इंडोर प्रदूषण भी इस महत्वपूर्ण अंग यानी हमारे फेफड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है। बाहरी प्रदूषण की तरह खराब इंडोर वायु गुणवत्ता भी फेफड़ों की गंभीर समस्याओं, अस्थमा और यहां तक कि कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है। अगर आपके घर ऑफिस में वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो ये फेफड़ों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा ऑफिस में बैठे हुए भी आप फेफड़ों के रोग के शिकार हो सकते हैं।
Yes, now let's also tell our listeners some quick tips that can help to improve lung health. Well, first of all, quit smoking. Smoking is the leading cause of lung diseases like COPD and lung cancer. Quitting smoking can help to improve lung function and reduce the risk of respiratory illnesses. Then, of course, avoid secondhand smoke. Exposure to secondhand smoke is equally harmful, thereby increasing the risk of lung diseases. Staying away from smoky environments can help protect your lungs. And lastly, exercise regularly. Physical activities like walking, swimming and aerobics can help improve lung capacity and overall respiratory function by strengthening the respiratory muscles.
और वहीं हमें ऐसे एरिया में जाने से बचना चाहिए जहां पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो। जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं अभिषेक, कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली की बात करें तो वहां यहां प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है। ऐसे में जब आप सुबह सैर के लिए निकलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए ऐसे एरिया में जाने से बचे जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क लगाना ना भूलें। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेट रखना आपके हर अंग के लिए जरूरी है, उनमें से फेफड़े भी एक हैं। ये जरूरी है कि आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं, ताकि फेफड़ों में मौजूद म्यूकस की कंसिस्टेंसी थिन रहे और आपके लिए सांस लेना आसान हो, साथ ही आपके फेफड़ों से पॉल्यूटेंट्स फिल्टर हो जाएं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास जानकारी है।
The government's flagship initiative Make in India has completed 10 years today, and during this period the government has implemented several key measures that have revolutionized India's manufacturing landscape and strengthened our economic growth. We have more from our correspondent Bhupinder.
Since it launched, Make in India initiative has made significant achievements and presently focused on 27 sectors. From space to semiconductors and from electronics to electric vehicles, Make in India has become a reality. Since the launch of this initiative, India has become the second largest mobile manufacturer in the world, with imports of mobile phones declining by around 85%. The production linked incentive scheme has enabled investment of over 1.2 lakh crore rupees across various sectors. In the past decade, India has launched a startup every hour, creating approximately 1.5 million jobs. At the same time, India's first indigenous semi-high-speed train, Vande Bharat, equipped with modern facilities, is providing an excellent experience for passengers. Additionally, India continues to dominate the digital payment space with the success of UPI, surpassing global digital payment platform and setting new benchmarks for real-time transactions across the world. With Pallavi Parmar, Bhupendra Singh, Akashwani News, Delhi.
In a significant move to curb the spread of dengue fever, the Puducherry government has unveiled the Dengue Reduction by Education Awareness and Monitoring in Schools alias Dreams 24 Project. This innovative initiative inaugurated by Puducherry Chief Minister Shri N. Rangaswamy aims to empower teachers and students to become champions in the fight against dengue. We have a report.
As part of the Dreams 24 initiative, a comprehensive dengue prevention training module and the user-friendly Dengue Connect app have been introduced. These resources are designed to equip students, to equip teachers with the knowledge and tools to guide students in identifying and eradicating mosquito breeding grounds, thereby minimizing the threat of dengue transmission. The Dreams 24 project builds on the ongoing measures under the National Vector-Borne Disease Control Program, spearheaded by the Puducherry Health Department. The new project is a collaborative effort between Health Department, ICMR Vector Control Research Center, and Puducherry Directorate of School Education State Training Center. As part of this initiative, two teachers from each school in Puducherry will be selected, with 1,000 teachers receiving training from VCRC experts. These trained teachers will in turn educate students on effective dengue prevention practices. Weekly dry days to eliminate standing water in schools, as well as creative competitions such as painting, essay writing and speech contest, will foster awareness among students while encouraging proactive engagement in dengue control. One of the most exciting aspects of Dreams 24 is its emphasis on student-led action. Students will conduct assessments of mosquito breeding sources in their neighborhoods and submit detailed reports as part of the initiative. Students will be encouraged to identify and report mosquito breeding sites through the Dengue Connect app. This hands-on approach not only builds awareness but also empowers students to take charge of their environment. Certificates and awards will be given to students and schools that demonstrate excellence in these efforts. Inaugurating the initiative, Chief Minister said that by sensitizing and empowering our school students, we are equipping future generations to protect the health and well-being of Puducherry. He also urged all schools to actively participate in this crucial initiative. This is Bibi Nasbar, All India Radio, Puducherry.
अभिषेक, इन दिनों देश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और इसी अभियान के तहत इन दिनों छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इस अभियान की थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता और इसके तहत प्रदेश में रैलियां प्रतियोगिताएं और कार्यशाला आयोजित कर लोगों को इस अभियान में सहभागिता लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राज्य में अनेक संस्थाएं अपने कामों से स्वच्छता का संदेश देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रेरणादायक काम कर रही हैं। सुनते हैं हमारे रायपुर संवाददाता की ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के तहत एक गांव है डोडकी। इस गांव की स्व सहायता समूह की महिलाएं कचरे का प्रबंधन कर उससे जैविक खाद बनाती हैं। समूह की महिलाएं अपने तिपहिया वाहन में घर घर घूमकर कचरा इकट्ठा करती हैं और फिर उसे लाकर इससे खाद बनाती हैं। ग्राम पंचायत ने मनरेगा के माध्यम से इस कार्य के लिए एक शेड और वर्मी टैंक का निर्माण भी कराया है। इससे न सिर्फ गांव में स्वच्छता का स्तर बढ़ा है बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। वहीं राज्य के राजनांदगांव जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों के बच्चे पानी की बोतल कोल्ड ड्रिंक्स की खाली प्लास्टिक बोतलों में प्लास्टिक की पन्नियां बिस्किट के रैपर जैसे अपशिष्टों को भरकर इको ब्रिक्स बना रहे हैं। इन इको ब्रिक्स का इस्तेमाल उद्यानों में क्यारियां बनाने के लिए किया जा रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
टू कमेमोरेट इट्स 69th फाउंडेशन डे टुडे, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन फॉर द पब्लिक दैट इंक्लूड्स फ्री हेल्थ कैंप एंड डेंटल कैंप इन इट्स न्यू दिल्ली कैंपस। द एग्जीबिशन इज एम्ड एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग द पब्लिक। We have more from a correspondent.
All the departments of AIIMS are showcasing the innovations and sharing information that is useful to the public. The innovations aim to spread awareness about maintaining a healthy lifestyle among the public. The institute has organized health camps for calculating weight, body mass index, blood pressure, sugar, among others for the public. Talking to Akashvani, research officer in the National Oral Health Program, Dr. Sarah Paul, talked about the creative methods being introduced to spread awareness on dental hygiene among students.
We've settled the models and few hygiene materials, which are in the form of game cards for students as well as partisan stickers. And we will also be giving demonstration of ideal toothbrushing methods as well as a talk on general oral hygiene for a doctor hair. As well as
the exhibition is open until 27th of this month and citizens can attend the health camps at free of cost. For Parikrama with Pallavi Parmar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
Odisha government's Subhadra scheme is making waves as a groundbreaking initiative to empower women in the state. Prime Minister Narendra Modi launched it on his birthday. This program aims to support over 10 million women aged 21 to 60 years with financial assistance. We have more from our Sambalpur correspondent.
Subhadra is a flagship scheme of the Odisha government. In this scheme, eligible beneficiary will receive 50,000 rupees over 5 years from the 2024-2025 financial year to the 2028-2029 financial year. The funds will be transferred in two equal installments of rupees 5,000 each year on Rakhi Purnima and International Women's Day. Beneficiaries will also receive a Subhadra card and ATM.com debit card to facilitate financial transactions. This initiative is expected to transform the lives of millions of women in Odisha, providing them with financial independence and empowerment. In Sambalpur district till now, more than 182,000 women have registered their name in this scheme. Rai Mati Maji, a beneficiary of Subhadra scheme, said,
मुझे सुभद्रा योजना की पहली किस्त में 5,000 रुपए मिले हैं इसलिए मैं ओडिशा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ इस पैसे को लेकर मैं एक छोटा सा टेलरिंग का बिजनेस करूंगी आगे मिलने वाले पैसे को मैं इस बिजनेस में लगाऊंगी
द ओडिशा गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 55,825 करोड़ रुपीज फॉर द स्कीम ओवर 5 years विद 10,000 करोड़ सेट असाइड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर परिक्रमा दिस इज आलोक चंद्र बारी आकाशवाणी संबलपुर
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day. In today's episode, we will bring you the story of the great freedom fighter, Prafulla Chandra Sen, who spent over 10 years in various jails between 1930 to 1942 for anti-British activities.
Today, the 25th of September, marks the death anniversary of a man who was a die-hard nationalist. Prafulla Chandra Sen always remained committed to Mahatma Gandhi's philosophy of grassroots democracy and a self-reliant rural economy. He also served as the Chief Minister of West Bengal from 1962 to 1967.
Sen was born in village Senhati in Khulna district of Bengal on 10th April 1897. After graduating, he wanted to move to England for higher studies. But his ambitions changed after hearing Mahatma Gandhi's speech in 1920. Influenced by Gandhi's speech, Sen abandoned his plans of studying abroad and joined Mahatma's call for mass non-cooperation movement against the British.
In 1923, Sen moved to Arambagh in the Hooghly district, which became his laboratory for Gandhian experiments on Swadeshi and Satyagraha. Arambagh was an underdeveloped and malaria-infested area of Bengal, where Sen worked hard for its betterment. For his efforts, Sen was affectionately called the Gandhi of Arambagh. He was elected to the Bengal Assembly from Arambagh in 1944 and was deputy leader of the opposition.
In 1948, he was inducted by then Chief Minister Dr. Vidhan Chandra Roy into the West Bengal Cabinet as Minister of Agriculture. After Roy's death in 1962, Sen became West Bengal's third Chief Minister. To his last, he remained a bachelor with an undemanding, selfless and principled lifestyle. Sen died in Kolkata on 25th September 1990, but his conviction towards the society is a lesson for all of us. India is forever indebted to the selfless service and sacrifice of freedom fighters like Prafulla Chandra Sen.
Today, we are also celebrating the birth anniversary of freedom fighter and former Deputy Prime Minister of India, Chaudhary Devilal. He also served as the Chief Minister of Haryana. He was born on this day in 1914 in Tejakhera village of Sirsa district in Haryana to Shubna Devi and Lekhram Sehag. A follower of Mahatma Gandhi, he was nearly 15 years old when he was drawn towards the independence movement. As a 16-year-old, he participated in a demonstration by Lala Lajpat Rai in 1928.
His participation in the Satyagraha movement in the 1930s and the Quit India campaign during World War II led to his imprisonment on several occasions and put an end to his formal schooling. A true Gandhian, Devilal worked vigorously throughout his life to advance the cause of farmers and other rural people, as well as so-called low castes.
Popularly known as Tau, Devilal knew the pulse of the masses and continued his activism on behalf of farmers after the independence of our nation.
As Chief Minister of Haryana, Devilal made several decisions benefiting farmers and rural people. He died on 6th April 2001 at the age of 85. Devilal remained committed to the cause of farmers till the end of his life. We salute the spirit and love for the nation of this great freedom fighter.
And that brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
In business news today, domestic benchmark indices, Sensex and Nifty, hit another fresh high in the last hour of trade. However, both the benchmark stocks opened today's session in red. The Nifty 50 reached a record high of 26,032 during the session before closing with a gain of 0.25% or 63 points at 26,004. Meanwhile, the BSE Sensex also achieved a new all-time high of 85,247 in the intraday and concluded the session with a gain of 0.3% or 255 points at 85,169. And this is the fifth consecutive session where the markets had hit record peak.
और अब श्रोताओं बात खेलों की. ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. ऋषभ पंत ने रैंकिंग में छठा स्थान हासिल किया है. टेस्ट में शानदार वापसी करने वाले पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 109 रन की शतकीय पारी खेली थी. टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल पांचवें स्थान पर हैं, वहीं रोहित शर्मा दसवें स्थान पर आ गए हैं. विराट कोहली भी पांच पायदान के नुकसान के साथ 12वें स्थान पर हैं. गेंदबाजी में अश्विन पहले स्थान पर हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह दूसरे और रविन्द्र जडेजा छठे स्थान पर हैं. श्रोताओं अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. आज सबसे पहले याद कर रहे हैं फिल्म निर्माता मधुरा जसराज को जिनका आज सुबह निधन हो गया. ये 86 वर्ष की थी. इनका अंतिम संस्कार ओशिवारा शमशान घाट पर किया जाएगा. मधुरा जसराज एक कुशल लेखिका फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर थी. ये अपनी प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री संगीत मारतंड पंडित जसराज और अपने पिता प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम की जीवनी लिखने के लिए जानी जाती हैं. 2010 में मधुरा जसराज ने अपनी पहली मराठी फिल्म का निर्देशन किया और एक फीचर फिल्म में सबसे उम्रदराज निर्देशक के रूप में इतिहास रचते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जगह बनाई.
जॉन हेनरी बोनहम पास्ड अवे ऑन दिस डे 1980. ही वाज एन इंग्लिश म्यूजिशियन हु वाज अ ड्रमर ऑफ द रॉक बैंड Led Zeppelin. Noted for his speed, power, fast, single, footed, kick drumming, distinctive sound and feel for groove, he is regarded as one of the greatest and the most influential drummers in history. Let's listen in to the band's hit track, Stairway to Heaven.
When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she can.
आज भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की पुण्यतिथि है. पार्श्व गायक होने के साथ साथ ये संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे. पांच दशकों में करीब इन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए और जब सलमान खान नए फिल्मों में आए थे तब कई सालों तक एसपी बाला सुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज समझा जाता था. इन्हें संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण, इसके अलावा 6 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके गाए कुछ मशहूर गीत।
ये पगला है समझाने से समझे ना,
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है,
Yes, and Deendayal Upadhyay was born on this day 1916, known by the epithet Panditji. He was an Indian politician, a proponent of integral humanism ideology, and leader of the political party Bharatiya Jan Sangh, BJS, the forerunner of the Bharatiya Janata Party, BJP. Upadhyay started the monthly publication Rashtriya Dharma, broadly meaning national faith, in the 1940s to spread the ideals of Hindutva revival. Upadhyay is known for drafting Jan Sangh's official political doctrine, integral humanism by including some cultural nationalism values, and his agreement with several Gandhian socialist principles such as Sarvodaya, progress of all, and Swadeshi, self-sufficiency. And also Sir Firozi, Firoz Khan was born on this day in 1939, born Zulfikar Ali Shah Khan. He is an actor, film editor, producer and director, best known for his work in Indian cinema. He has appeared in over 60 films throughout his career and became one of Bollywood's popular style icons, and is known for his roles in successful Hindi films. And let me tell you that he has often been called the Clint Eastwood of the East.
Ji, aaiye sunte hain Firoz Khan ki picture ka ye dialogue.
चोरी चाहे एक पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। आप आधे चोर, एक चौथाई चोर, ऐसे चोर नहीं बन सकते। या तो आप चोर हैं या एक शरीफ आदमी। आप समझते हैं कि मटके के जरिए हजारों लाखों घर तबाह करके चंद गरीबों के मुंह में रोटी डाल दी तो आप धर्मात्मा बन गए? शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 आदमियों के जख्मों पे मरहम रख दिया तो आप धर्मात्मा बन गए? स्मगलिंग के जरिए देश को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर चंद यतीमों के आंसू पोंछते तो आप धर्मात्मा बन गए? नहीं पिताजी, नहीं।
Yes, and you won the Filmfare Best Supporting Actor Award for Aadmi aur Insaan in 1970 and was honored with the Filmfare Lifetime Achievement Award in 2000. Let's listen to a hit song of one of his movies.
आज रुक्माबाई राउत की पुण्यतिथि है। ये भारत की पहली महिला चिकित्सक थीं। ये एक ऐतिहासिक कानूनी मामले के केंद्र में भी रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना। रुक्माबाई के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर गूगल ने इन्हें डूडल बनाकर सम्मानित किया।
सतीश धवन वाज बोर्न ऑन द डे 1920। ही वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर, widely regarded as the father of experimental fluid dynamics research in India. And born in Srinagar, Dhawan was educated in India and further on in the United States. Dhawan was one of the most eminent researchers in the field of turbulence and boundary layers, leading to the successful and indigenous development of the Indian space program.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।